बरसत है बहता पानी, वक्त है बहता पानी। वक्त है बहता पानी, वक्त है बहता पानी। बदले मौसम साल महीना, वक्त के संग होगा जीना। रुक गए तो खत्म कहानी, रुक गए तो खत्म कहानी। वक्त है बहता पानी, वक्त है बहता पानी। बदले बदले सपने, हर से में यहाँ रवानी। वक्त है बहता पानी, वक्त है बहता पानी। सामने एक खिलती दुनिया, देखो देखो बदलती दुनिया, देखो देखो बदलती दुनिया, देखो देखो बदलती दुनिया।
हेलो, अच्छा गृह शांति पूजा। हाँ हाँ हो जाएगा जी। अरे सब्र करो भाई। नहीं 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 आपको नहीं बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, आपको कौन सी करवानी है? ठीक है आप सोच के बता दीजिएगा। अरे विभूति, आत्मदेव वहां क्या कर रहा है, क्या लगा रहा है वो दीवार पर?
अरे भाई क्या तू जानता नहीं है?
क्या?
अरे वो कुछ दिन पहले राजस्थान गया था।
हाँ?
जब से वहां से लौटा है तब से कुछ बदला बदला सा लग रहा है। और इतना ही नहीं, गांव के लोगों को तो पता नहीं क्या नाप सनाप बोलता रहता है।
आज आत्मदेव जी नहीं आए क्या?
हाँ, आत्मदेव जी वहाँ है। कुछ समझ नहीं आता वो क्या कर रहा है, सब उसके पीछे भागते हैं।
कितनी अच्छी बातें हैं, मंदिर के अंदर ऐसी ही बातें लिखी होनी चाहिए।
आप कब आए?
अभी अभी आए।
आप ठीक तो हैं? घर में सब कुशल मंगल तो है?
आपकी पूजा से मेरे घर की सारी समस्या दूर होगी।
नहीं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, फल देने वाला तो ईश्वर है और आपकी ईश्वर भक्ति का ही ये सब नतीजा है। ईश्वर भक्ति का फल एक दिन सबको मिल ही जाता है और इस भक्ति का फल देने ईश्वर स्वयं इस धरती पर आते हैं।
Thank you. शिवाय ओम नमः शिवाय
एक बात कहूँ?
कहिए।
ये जो हम तिलक लगाते हैं इसका कोई अर्थ है या यूं ही लगाते
मुझे
हैं?
कुछ पता नहीं, यह एक रिवाज होगा या भक्ति की निशानी, और क्या हो सकता है?
ये आध्यात्मिक रहस्य है। जहाँ हम बिंदिया और तिलक लगाते हैं वह आत्मा के रहने का स्थान है, और ये तिलक खुद को और दूसरों को आत्मस्मृति याद दिलाने के लिए लगाया जाता है।
वाह, मैं तो नई बात सुन रही हूँ, बहुत ही सुंदर बात है। हम तो भक्ति से ये सब कर रहे थे।
भक्ति के साथ साथ ज्ञान रहना भी जरूरी है, और ज्ञान से अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता है।
बहुत अच्छी बात है, कभी फुर्सत में आपसे ज्ञान की बातें जरूर सुनूंगी। आप ये पैसा रखिए और प्रसाद चढ़ाकर गरीबों में बांट दीजिएगा। मैं चलती हूँ।
ठीक है।
अरे मैं तेरी ही कुंडली बना रहा हूँ, बैठ बैठ। अरे अरे यहाँ नहीं, यहाँ यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो, आओ आओ बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो बैठो, आराम से बैठो बैठो।
अच्छा ठीक है।
इस समय तुम्हारी ग्रह दशा बहुत खराब है, और तुम्हारी कुंडली में शनि की दशा है, धनहानि, प्राण पीड़ा और ऐसे कई कष्ट हैं। अरे तेरा मृत्यु योग भी है।
इसका कोई तोड़ है पंडित जी?
है ना, दूध से, जल से, मधु से, घी से रुद्राभिषेक करवाना पड़ेगा। पूरे 80,000 का खर्चा होगा, समझा?
80,000? इतने पैसे? मेरा हालत तो ऐसे ही खराब है, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा?
अच्छा छोड़, एक काम कर, 10 ब्राह्मणों के लिए भोजन और दक्षिणा में 16,000 दे दे।
इतना भी नहीं दे सकता?
इतना भी नहीं कर सकता? अच्छा छोड़, 2,500 का जुगाड़ तो कर ले।
500? एक भी रुपया नहीं है।
चल हट यहाँ से, शनि ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चल यहाँ से, मेरा टाइम खोटी मत कर, चल चल यहाँ से, चल चल यहाँ से।
कैसे हैं?
बहुत अच्छे।
वेद प्रकाश जी, कई साल आप रुद्राभिषेक नहीं करवाएंगे, आप तो बड़ी धूमधाम से रुद्राभिषेक करवाते हैं।
क्या करूं? वही सोच रहा हूं, बीवी के गुजर जाने के बाद बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं, बच्चे भी बाहर रहते हैं, सोचता हूं संभाल पाऊंगा या नहीं अपने आप को।
इतनी चिंता मत कीजिए वेद प्रकाश जी, आप 21 वर्षों से बड़े धूमधाम और भक्ति भाव के साथ रुद्राभिषेक करते आए हैं, अभी और कर्मकांड करने की चिंता मत कीजिए, अपने मन और बुद्धि को ईश्वर के आगे समर्पण कीजिए, रुद्र ज्ञान प्राप्त कीजिए, बड़ा सुकून मिलेगा। ईश्वरी ज्ञान प्राप्त होना माना ईश्वर की प्राप्ति होना।
वेद प्रकाश जी, मैं जल्दी में हूँ, मंदिर चलता हूँ, फिर मिलते हैं।
अरे भाई, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे
विभूति,
कुछ भी समझ नहीं आ
रहा। रुको रुको रुको, सुनो, ये आत्मदेव है ना, पगला गया है, पता नहीं लोगों को क्या क्या सुनाता है। लगता है इसकी खोपड़ी घूम गई।
अरे क्या हुआ बताओ तो सही, आप क्यों इतना बड़बड़ा रहे हैं?
अरे वेद प्रकाश जी।
अरे कौन वेद प्रकाश जी?
अरे वो जो हर साल बड़े धूमधाम से रुद्राभिषेक करवाते हैं।
हाँ हाँ याद आया, वो बहुत दान दक्षिणा देते हैं।
तो उनका क्या हुआ?
अरे उनका कुछ नहीं हुआ, ये आत्मदेव उनको बताता है कि रुद्राभिषेक करने की जरूरत नहीं और ज्ञान दे रहा है।
अरे शंकर जाकर देखो तो क्या पट्टी पढ़ा रहा है वो उसको।
हाँ मैं जाकर देख के आता हूँ।
अरे सुन,
आपने सही कहा आत्मदेव जी, अभी ईश्वर अनुभूति करने को दिल कह रहा है, मगर एक जिज्ञासा है, आपने ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया और कैसे मिला?
ये एक इत्तफाक समझिए या ईश्वर की कृपा, मुझे ये ज्ञान ब्रह्मा कुमारी संस्था से प्राप्त हुआ।
अरे हाँ हाँ, वो जो मार्केट में है, दो तीन बार वहाँ से आए थे लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला।
आप एक बार वहाँ अवश्य जाइए और वो जो कहते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे भी भक्ति की प्राप्ति तो ज्ञान ही है, और आप इतना समय से भक्ति मार्ग में थे, उसका फल तो आपको मिलना ही चाहिए।
अच्छा
हाँ बात तो ठीक है, और ये शंकर क्यों नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गया?
अरे क्या चल रहा है जानते हो?
अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है?
गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं, ये वेद प्रकाश जी को ब्रह्म कुमारी के पास भेज रहा है, ये उल्टा ज्ञान उसको वहीं से मिला है। चलो चलो अभी मंदिर के ट्रस्टी को बताते हैं, चलो चलो।
कीजिए, हाँ इधर आइए।
सीताराम जी देखिए, आत्मदेव अभी तक नहीं आया।
मुझे तो लगता है वो आएगा ही नहीं।
उसे मंदिर से निकाल ही दीजिए।
हाँ उसे निकाल ही दीजिए।
हाँ हाँ उसे निकाल ही दीजिए।
हाँ हाँ उसे निकाल ही दीजिए।
हाँ उसे निकाल ही दीजिए।
देखिए इसमें इतना अस्वस्थ होने की आवश्यकता नहीं है। आत्मदेव जी एक कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, उनकी चर्चा गांव गांव में होती है। कोई अड़चन आ गई होगी इसीलिए विलंब हो रहा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आत्मदेव जी जरूर आएंगे, लेकिन उनके आने से पहले इस सभागार में मौजूद जितने भी पुजारीगण हैं और सदस्यगण हैं, उन सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो शांति बनाए रखें।
ये दवाई लेके आ जाइए।
डॉक्टर साहब कुछ डरने की बात तो
नहीं? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम।
शुक्रिया डॉक्टर साहब।
जल्दी लेके आइए।
मैं माँ की दवाई लेकर आ रहा हूँ, आप माँ के पास बैठो। डरने की कोई बात नहीं है, आप ये दवाई लो और माँ के पास बैठो, मैं अभी गया अभी आया।
आप कहाँ जा रहे हैं?
अरे वो मंदिर ट्रस्टी बोर्ड ने मुझे बुलाया, उनसे मुझे कुछ काम है, उनसे मिलकर मैं तुरंत आ रहा हूँ।
माँ की ऐसी हालत है और ऐसा क्या जरूरी काम है जो आपको अभी जाना है?
जजमानों को मेरा ज्ञान सुनाना कुछ ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा, उन लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत किया है, न जाने क्या होने वाला है।
ठीक है बाबा पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा।
बाबा पर तो मेरा पूरा भरोसा है, लेकिन अगर मैं वहाँ नहीं गया तो बातों का बतंगड़ बना देंगे।
ठीक है जाइए, बाबा को याद करते हुए जाइएगा और बाबा पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा।
हाँ ठीक है।
सुनिए आप जाते जाते ताला लगाते हुए जाइएगा। मैं जल्दबाजी में ताला लगाना भूल गई थी ना।
हाँ हाँ, मुझे भी कुछ काम है, कुछ सामान लेकर जाऊंगा। ठीक है, अब जाओ आप।
जी ठीक है,
जाइए।
सीताराम जी और कितना इंतजार करेंगे, आत्मदेव नहीं आने वाला है।
वो आएगा ही नहीं, उसको यहाँ आने का कारण तो पता चल ही गया होगा। खुद को पंडित और धर्मिष्ठ समझने वाला यहाँ किस मुँह से आएगा।
आइए आत्मदेव जी, आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था।
मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और माफी चाहता हूँ। माँ की तबीयत कुछ ज्यादा खराब थी, इसलिए दवाई लाना पड़ा तो देर हो गई।
मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आत्मदेव जी, आपके नाम पे कुछ शिकायतें आई हैं, हमें उनका जवाब चाहिए, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है।
कुछ कहने से पहले मैं आप सभी से दोबारा से माफी चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में मेरे प्रति कुछ शंका उत्पन्न हुई है, वो मैं अभी दूर किए देता हूँ। बताइए इसका रंग क्या है?
ये तो लाल रंग है।
पक्का लाल रंग है?
हाँ भाई, हमको तो लाल रंग ही लगता है।
पक्का लाल रंग है?
अरे ये तो तुम्हारे तरफ था, हमें कैसे दिखाई देगा?
सीताराम जी, जब हम कोई बात सुनते हैं या कोई वस्तु देखते हैं, उसके पीछे का पूरा सत्य क्या है उसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। जो हमने सुना या देखा उसी को सत्य मान लेते हैं। ये सब करने के पीछे मेरा यही कारण था। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं आप सभी के सामने अपने अनुभव रखना चाहता हूँ।
देखिए सीताराम जी, ये सबका वक्त बर्बाद करना चाहता है, और ये जो कर रहा है वह ठीक नहीं है, और ना ही इसके पास कोई जवाब है।
ये हमारी परंपरा को तोड़ना चाहता है, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है।
इसको अभी इसी वक्त मंदिर से निकाल देना चाहिए।
आप लोग शांति बनाए रखिए।
देखिए, आप लोगों को क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी शास्त्राज्ञ पंडित हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 और श्लोक 63 में लिखा है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रसात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणाशयति। इसका अर्थ तो आप सभी को मालूम ही होगा कि क्रोध करने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। कुछ निर्णय लेने से पहले हमें अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए और उस विषय पर विचार करना चाहिए। जैसे पेड़ से एक सेब भूमि पर गिरने के विषय को सर आइजक न्यूटन विचार को लिया गया तो एक अनजाना सा सत्य सामने आया। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, पहले आप मेरे अनुभव सुने, उस पर विचार करें, उसके पश्चात ही कोई निर्णय लें।
ठीक है, आप अपना अनुभव सुनाइए।
आप सभी जानते हैं मैं धर्म में निष्ठा रखता हूँ और कर्म में भी निष्ठा रखता हूँ। एक रोज की बात है, मैं सुबह 4 बजे जागा और मैंने अपनी पत्नी को ध्यान मुद्रा में देखा।
कुचुम शंकाशम काश्यपेम महाधुतिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणोतस्मि दिवाकरम।
आज मैंने तुम्हारा एक नया अवतार देखा, तुम किसी के ध्यान में मग्न थी, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा।
मैं भगवान से बातें कर रही थी।
क्या बात है, आज जल लाना भूल गई?
ओहो हाँ हाँ अभी लाई।
पहले तो कभी पानी लाना नहीं भूली, क्या कोई समस्या है? अच्छा अर्चना, भगवान ने तो हमें बहुत सुख शांति से रखा है, फिर भगवान से बात करने की क्या आवश्यकता हो गई? सच बताओ, खुलकर बताओ। अगर खुलकर नहीं बताओगी तो कैसे पता चलेगा कि क्या समस्या है?
मेरी कोई समस्या नहीं है।
तो फिर?
मैं अपने पत्नी धर्म का पालन कर रही थी।
तुम क्या बोल रही हो, ये सब मेरी समझ से पार है।
शास्त्रों में भी कहा गया है पत्नया त्रायते इति पत्नी, अर्थात पत्नी का धर्म है पति को पतन मार्ग से बचाना।
तुम क्या सोचती हो कि मैं तुमसे छुपाकर कोई गलत काम कर रहा हूँ या कोई पाप कर रहा हूँ?
नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। आप एक धर्मनिष्ठ शास्त्रज्ञ पंडित है। आजकल दुनिया इतनी पतित हो गई है और पतितों को पावन बनाने का कार्य भगवान आरंभ कर चुके हैं। आप एक बार मेरे साथ आश्रम चलिए, फिर आप सब समझ जाएंगे।
अर्चना, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है,
स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्म भयावह,
अर्थात स्वधर्म में मर जाना ही बेहतर है। उनको उनके स्वधर्म में रहने दो, हम अपने स्वधर्म में ठीक हैं।
मैं भगवान से यही कह रही थी, स्वधर्म क्या है मेरे पति को समझा दीजिए।
कुछ दिन ऐसा ही मेरा मेरी पत्नी के साथ तर्क चलता रहा।
अरे तो बहुत ही रोचक बात है, आगे क्या हुआ?
कुछ दिनों बाद माउंट आबू जाने का मौका मिला।
पहुंच गए।
कितनी शांति है ना यहाँ,
आइए।
और मौसम भी कितना अच्छा है।
के प्रोग्राम होते हैं। इस तरफ आइए। ये जो इतनी सुंदर जगह देख रहे हैं, ज्ञान सरोवर है। यहाँ पे आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन का महान कर्तव्य इसी ज्ञान सरोवर से हो रहा है।
धार्मिक संस्थान और सामाजिक सेवा संस्थान से जुड़े हुए लोग जो हमारे बीच भाई बहन आज पधारे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरी ओर से। साथ ही साथ मुझे अभी बहन ने आदेश दिया है, परमात्म ज्ञान द्वारा सुख व शांति। जब परमात्म ज्ञान मिलेगा तो निस्संदेह जहां परमात्म ज्ञान होगा वहां प्रकाश होगा, जहां ज्ञान होगा वहां अंधकार का अभाव होगा, जहां सामर्थ्य होगी वहां असमर्थता स्वयं मूर्छा जाएगी।
अब अगर इसको हम देखें तो पहले जो दो शब्द हैं परमात्म ज्ञान, हम ये क्यों कह रहे हैं कि परमात्म ज्ञान से सुख शांति? इसलिए कह रहे हैं कि ना तो सारी दुनिया में सुख मनुष्यात्मा ने कभी किया है और ना ही सारी दुनिया में दुख से मनुष्य आत्माएं छूट या छुड़ा सकती हैं। इसीलिए भारत को परमात्मा के जन्म स्थान, परमात्मा की अवतरण भूमि कहा गया है।
अरावली पर्वत एक ऐसा स्थान है, उसके अंदर भी ये ज्ञान मान सरोवर है, जो ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य के जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। सिर्फ सरोवर में अगर हम जाके स्नान करेंगे तो तन की स्वच्छता होगी, मन की स्वच्छता चाहिए। हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे कर्मों के अंदर अगर शुद्धता चाहिए तो ये ज्ञान मान सरोवर है, मन को स्वच्छ करने वाला। ऐसा स्थान है। तो और आप और हम सभी मिलकर 3 दिन अच्छी तरह से ज्ञान को भी समझेंगे और अच्छी तरह से साधना करेंगे।
आइए बैठिए, आप यहां बैठिए।
आप भी खाइए ना खाना।
मैं रात का भोजन ले चुकी हूँ, आप लोग भोजन कीजिए। और मेरी थोड़ी मीटिंग है आज, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, फिर मिलती हूँ। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।
यहाँ पर आकर आपको कैसा लगा?
सच कहूँ यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, और यहाँ की व्यवस्था उससे भी ज्यादा अच्छी लगी। और ये सब देखकर यहाँ की विशालता का तो स्वतः ही पता चलता है।
मैं वो सब नहीं पूछ रही थी, ये सब तो बाहरी व्यवस्था है। ये ज्ञान सुनकर आपको कैसा लगा?
सभी अपने अपने विचारों पर जीते। मैंने तुम्हें कभी यहाँ आने से मना किया और ना ही करूँगा। तुम्हारी जीवन तुम्हारी है, जो विचार तुम्हें अच्छा लगे वो तुम अपना सकती हो। लेकिन मैं एक कौलिक ब्राह्मण हूँ, क्या मैं अपनी परंपरा छोड़ सकता हूँ? ये संभव नहीं है। विचार अच्छा लगना और उसे अपनाने में बहुत अंतर है। ये तो शिव को ही भगवान मानते हैं, और वैसे भी मैं तो शिव का ही पुजारी हूँ।
आप जाइए रूम में, मैं बाबा के रूम में जाऊंगी फिर आऊंगी। समझते नहीं है, आप ऐसा कुछ करें जिससे वो आपको महसूस कर सके।
आत्मदेव, आत्मदेव, जिसको तुम प्यार से पुकार रहे थे, जन्मों जन्म जिसकी पूजा की तुमने, वो अभी तुम्हारे सामने है। वो स्वयं तुम्हें पुकार रहा है, और तुम, क्या तुम उसे पहचान नहीं रहे हो? मैं आया ही हूं भक्तों को भक्ति का फल देने। आत्मदेव, आत्मदेव,
खुद से ही मैं क्यों दूर था, क्यों राह को मंजिल समझ मंजिल से अपनी दूर था। ये क्या हुआ मैं खो गया मुझे, मेरा कोई दे पता, मैं आ गया
नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। कल रात एक अद्भुत सा एहसास हुआ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं यहाँ मैं कैसे आया।
क्लास में नहीं जाना है क्या?
मुझे दादी जी से मिलना है। मैं दादी जी से मिल सकता हूँ या नहीं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है।
ठीक है, मैं दीदी से बात करती हूँ।
ठीक है, तुम क्लास जाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। ठीक है।
आइए बैठिए। ओम शांति।
दादी, आत्मादेव है, आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते, इसका आप उत्तर दीजिए।
दादी जी, कल रात में जब शांति स्तंभ के यहाँ खड़ा था तो अचानक से मेरे कानों में कोई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बोल रहा है कि आत्मदेव तुम भक्ति में मुझे पुकारते रहे पुकारते रहे पुकारते रहे, और जब मैं तुम्हें मिला तो तुम मुझे पहचान नहीं पाए। दादी जी, मैं ये सब समझ नहीं पाया, ये सब क्या है?
अगर जीवन में सच्ची भावना से भक्ति करते हैं तो भगवान उसको किस न किस रूप में फल तो देता ही है।
दादी जी, मैंने यहाँ देखा है कि सभी सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, क्या यहाँ सफेद वस्त्र ही पहने जाते हैं?
देखो, हम लोग भैया सफेद ड्रेस पहनते हैं, ऐसे नहीं हमें कोई मना करते हैं ये नहीं पहनो वो पहनो, परंतु फिर अपने दिल को नेचुरली है ना, जब ईश्वर के साथ मन लग जाता है तो बाहर की आज की जो बाहर की वृत्ति है उनसे मन बदल जाता है। ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये है वो है, खान पान ये सब, तो उससे मन बदल जाता है। अपना खान पान शुद्ध रखना है, वस्त्र भी शुद्ध रखना है, जो ऐसे भी नहीं कोई मुझे देखो उसको मेरे तरफ आकर्षण हो, क्योंकि शरीर के तरफ किसकी भी आकर्षण, ज्ञान तो किसको है नहीं, तो शरीर के तरफ आकर्षण होंगी वो तो नुकसानकारक है ना। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर वो धारणा बनानी है, तो मैं शुद्ध आत्मा अर्थात सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा को इन आंखों से देखा नहीं जाता है और न देख सकते हैं। अपनी आत्मा को ही नहीं देख सकते हैं तो परमात्मा को कैसे देख सकेंगे। तो इसमें इन वस्त्रों आदि की बात नहीं है, वो तो जैसे जैसे ये समझ सक जाएगा, जैसे स्वयं की पहचान आएंगी, वैसे अपने जीवन के अंदर उसी रीति से चलता रहेगा, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा।
दादी जी, क्या मैं अपनी व्रति में रह सकता हूँ?
बाकी कपड़ा पहनने के लिए, भोजन खाने के लिए, वो तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और उसके लिए शरीर को बिठा थोड़ी देंगे, शरीर से भी मेहनत तो करेंगे ना, काम काज करना है। ऐसे तो समझो परिवार है, परिवार में माँ बाप जो भी कहते हैं उनका भी उनकी भी यथार्थ बात मानिए। बाकी कोई ऐसी जैसी बात है तो हम समझते हैं ठीक है, बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं तो चलो किनो किनो के बोल ऐसे हो जाते हैं, पर अगर हम अच्छा होके चलते हैं तो वो भी हमें प्यार करेंगे।
असल में शास्त्रों में भगवान के लिए क्या कहा गया है और उसको जानने की कभी हमने कोशिश ही नहीं की, बस तोते की तरह रटते रहे। क्या हमें भगवान के बारे में जानना नहीं चाहिए? क्या हम ईश्वर को दिल से अपना पालनहार मानते हैं? अगर मानते हैं तो अपने पालने की चिंता क्यों करें? ये तो ईश्वर का काम है, हमें तो बस कर्म ही करना है। हम खुद कौन हैं? क्या हमें जानना नहीं चाहिए? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और स्वयं परमात्मा हमारा पालनहार है ये हम भूल जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ से हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत प्राप्त करते हैं।
आप सही कह रहे हैं, हमें ये ज्ञान भी जानना चाहिए। हर जगह लोगों को रुद्र ज्ञान सुनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है, इस सच्चे ज्ञान को हमें अपना लेना चाहिए, उसको अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। इस बदलती दुनिया के साथ साथ अपने आप को भी बदल लेना चाहिए।
है बहता पानी, वक्त है बहता पानी, बदले मौसम साल महीना, वक्त के संग हो गजीना, रुक गए तो खत्म कहानी, रुक गए तो खत्म कहानी, वक्त है बहता पानी।